एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जिसने वाकई सुंदरता के मायनों पर और समाज में महिलाओं की स्थिति पर बहुत गहरे सवाल खड़े किए हैं।
बिल्कुल, मैं हूं आपका साथी मेजबान, और आज हम नाओमी वुल्फ की जबरदस्त किताब द ब्यूटी मिथ, यानी सौंदर्य का मिथक, इस पर चर्चा करेंगे।
ये किताब वैसे तो 1990 में आई थी, है ना?
हाँ, 1990 में। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी, मतलब शायद आज तो और भी ज्यादा, इसकी बातें एकदम सटीक लगती हैं।
सही का, खासकर ये सोशल मीडिया और फिल्टर्स का जमाना। हर तरफ एक परफेक्ट दिखने का एक अंतहीन दबाव सा महसूस होता है।
बिल्कुल, और वुल्फ की किताब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है कि भाई, जब महिलाओं को कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे इतनी तरक्की मिली, ज्यादा आजादी मिली,
हाँ,
तो फिर वो अपनी शक्ल सूरत को लेकर पहले से ज्यादा, मतलब, परेशान और असुरक्षित क्यों होगी?
ये बहुत बड़ा सवाल है, और जैसा वुल्फ कहती हैं, ये सिर्फ कोई पर्सनल इनसिक्योरिटी की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ा सामाजिक, यहाँ तक कि राजनीतिक मुद्दा है, एक जाल है एक तरह का, और वुल्फ ने अपनी किताब में इसी जाल की परतें खोली हैं।
तो फिर जानना जरूरी है कि ये नजरिया आया कहाँ से, ये नाओमी वुल्फ है कौन?
हाँ, तो नाओमी वुल्फ ये एक अमेरिकी लेखिका हैं, पत्रकार हैं, और दिलचस्प बात यह है कि जब ये किताब छपी 1990 में, तब वो सिर्फ करीब 28 साल की थी।
अच्छा, इतनी कम उम्र में इतनी प्रभावशाली किताब। येल से पढ़ी, ऑक्सफर्ड में रोड स्कॉलर भी रहीं, मतलब अकेडमिक तौर पे तो काफी मजबूत थी।
हाँ, वो तो थी ही, लेकिन उनकी खास बात सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, वो उस पीढ़ी की थी जिन्होंने नारीवाद की जो दूसरी लहर थी उसकी कामयाबियों के बाद का समय देखा।
मतलब उन्हें सिखाया गया कि वो कुछ भी बन सकती हैं, कर सकती हैं।
बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने महसूस किया कि समाज का ध्यान उनकी काबिलियत से हटकर कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती पर ज्यादा टिकने लगा था। एक अजीब सा, मतलब, विरोधाभास था ये।
हाँ, और शायद इसीलिए वो तीसरी लहर के नारीवाद की एक अहम आवाज भी बनी। ये लहर कानूनी अधिकारों से आगे जाकर संस्कृति, पहचान, मीडिया में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, इन सब पर बात कर रही थी।
सही, और वुल्फ ने अपने अकादमिक ज्ञान को अपने निजी अनुभवों से जोड़ा। उन्होंने खुद अपने खाने के विकारों से जो संघर्ष किया उसका भी जिक्र किया है। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिली कि ये सुंदरता का दबाव कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है,
बल्कि एक पूरी व्यवस्था है, एक सिस्टम है।
हाँ, एक सोची समझी व्यवस्था। उन्होंने उन सांस्कृतिक ताकतों का विश्लेषण किया जो महिलाओं की नई नई मिली आज़ादी को एक तरह से अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी।
ये समझना बहुत जरूरी है, ये किताब सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं है,
ये सत्ता और नियंत्रण के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल, तो चलिए अब किताब के मूल विचार पर आते हैं।
हाँ,
ये ब्यूटी मिथ या सौंदर्य का मिथक आखिर है क्या चीज?
हाँ, बताइए।
देखिए, वुल्फ का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि सुंदरता का ये जो जुनून है ना, जिसे हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो नेचुरल है या हमारी पर्सनल चॉइस है।
हाँ, कि भाई मुझे अच्छा दिखना पसंद है।
बिल्कुल, वुल्फ कहती हैं कि ये असल में समाज ने गढ़ा है, और खास तौर पे ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने का एक बहुत चालाक तरीका है।
कैसे, मतलब इसका क्या कनेक्शन है महिलाओं की प्रगति से?
कनेक्शन ये है कि जैसे जैसे महिलाओं ने पढ़ाई में, नौकरियों में, राजनीति में अपनी जगह बनानी शुरू की, वैसे वैसे उन पर खूबसूरत दिखने का दबाव भयानक रूप से बढ़ गया। इसी को वुल्फ कहती हैं ब्यूटी बैकलैश।
ब्यूटी बैकलैश यानी सुंदरता के जरिए एक तरह का पलटवार।
एग्जैक्टली, नारीवादी प्रगति के खिलाफ सुंदरता के हथियार से किया गया एक पलटवार। ये एक अदृश्य हथियार है।
अदृश्य हथियार कैसे काम करता है? ये
मिथक महिलाओं का आत्मविश्वास खत्म करता है, उनका समय, उनका पैसा बर्बाद करवाता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वुल्फ कहती हैं कि ये उन्हें एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देता है जिसे वो आयरन मेडन कहती हैं।
आयरन मेडन, ये नाम तो काफी डरावना लग रहा है, इसका क्या मतलब है यहाँ?
आयरन मेडन असल में मध्य युग का एक टॉर्चर डिवाइस था। वुल्फ इस शब्द का इस्तेमाल सुंदरता के उस कठोर, अमानवीय और हमेशा जवान रहने वाले आइडियल के लिए करती हैं जिसे हासिल करना नामुमकिन है।
अच्छा, मतलब वो परफेक्ट इमेज जो हम विज्ञापनों में देखते हैं।
हाँ बिल्कुल, जो सिर्फ विज्ञापनों में या आप कहें तो फिल्टर्स में मौजूद है, असल जिंदगी में वो नहीं मिल सकती। और लगातार इस नामुमकिन चीज का पीछा करना ये महिलाओं के लिए एक तरह की मनोवैज्ञानिक यातना बन जाता है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो वुल्फ ने इस मिथक को हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कैसे काम करते हुए दिखाया है? किताब के अंदर वो इसे कैसे खोलती हैं?
वो इसे परत दर परत खोलती हैं, जैसे परिचय में वो अपना मुख्य तर्क सामने रखती हैं कि जहां पुराना फेमिनिन मिस्टीक महिलाओं को घर में बांधता था, वहीं ये नया ब्यूटी मिथ उन्हें उनके अपने शरीर में कैद कर देता है।
और यहीं वो आयरन मेडन का आइडिया लाती हैं।
हाँ, यहीं पर वो कहती हैं कि ये आदर्श जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि उसे पाया ना जा सके, ताकि महिलाएं हमेशा खुद को कमतर आंकती रहें।
और फिर इसका असर हमारे कामकाज, हमारी नौकरियों पर कैसे पड़ता है, इस पर भी बात की है वुल्फ ने।
हाँ बिल्कुल, किताब का एक हिस्सा है कार्य, वर्क पर। उसमें वो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक बात करती हैं, प्रोफेशनल ब्यूटी क्वालिफिकेशन या PBQ के।
प्रोफेशनल ब्यूटी क्वालिफिकेशन, ये क्या है, कोई डिग्री है?
नहीं, ये कोई लिखी हुई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक अलिखित जरूरत है। मतलब नौकरियों में, प्रमोशन में महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो ना सिर्फ काबिल हों बल्कि खूबसूरत और सलीकेदार भी दिखें।
अच्छा, मतलब लुक्स भी एक तरह की योग्यता बन गए।
हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का अदृश्य ब्यूटी टैक्स है। महिलाओं को अपनी नौकरी बनाए रखने या आगे बढ़ने के लिए अपने लुक्स पर काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। ये भेदभाव का एक नया, बहुत ही छिपा हुआ तरीका है।
और इसमें हमारे आसपास की जो संस्कृति है, मीडिया, विज्ञापन, उसका क्या रोल है?
अरे उसका तो बहुत ही बड़ा रोल है। संस्कृति वाले सेक्शन में वुल्फ इसी का विश्लेषण करती हैं। मास मीडिया, मतलब टीवी, फिल्में, मैगजीन और अब तो सोशल मीडिया भी जोड़ लीजिए, इन्होंने सुंदरता का एक बहुत ही संकरा, एक जैसा दिखने वाला आदर्श पूरी दुनिया में फैला दिया है।
हाँ, वो टिपिकल इमेज, युवा, पतली, गोरी।
बिल्कुल, और फिर एयरब्रश की हुई, फोटोशॉप की हुई या फिल्टर लगी हुई तस्वीरें हमें यकीन दिलाती हैं कि बस यही नॉर्मल है, यही सुंदर है। नतीजा क्या होता है?
नतीजा ये कि हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर से नाखुश रहने लगते हैं।
एग्जैक्टली, और इसी नाखुशी, इसी असुरक्षा पर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज फल फूल रही हैं। फैशन, कॉस्मेटिक्स, वेट लॉस, विज्ञापन, ये सब इसी से पैसा कमाते हैं।
ये तो बिल्कुल रोजमर्रा की बात लगती है, लेकिन वुल्फ इसे धर्म से भी जोड़ती हैं। सुंदरता और धर्म का कनेक्शन, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
हाँ, ये उनका एक काफी मतलब अनोखा और सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है। धर्म वाले अध्याय में वो कहती हैं कि ये ब्यूटी मिथ जो है, ये एक नए जमाने के धर्म की तरह काम करता है।
धर्म की तरह? कैसे?
आप सोचिए जरा, शरीर एक मंदिर बन गया है जिसे एकदम पवित्र, शुद्ध रखना है। डाइटिंग करना एक तरह का उपवास है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। बुढ़ापा आना एक पाप जैसा माना जाने लगा है और झुर्रियां मानो उस पाप के निशान है।
अच्छा,
और फिर कॉस्मेटिक सर्जरी, बोटॉक्स, ये सब मानो मुक्ति पाने के या प्रायश्चित करने के अनुष्ठान बन गए हैं। इस नए धर्म में अच्छी औरत कौन है? जो खूबसूरत है, पतली है, अनुशासित है, अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण रखती है।
और जो औरत खुद को जाने देती है जैसा कहा जाता है,
हाँ, वो बुरी या लापरवाह मानी जाती है। ये एक तरह का नैतिक जजमेंट बन गया है।
ये तुलना तो वाकई काफी दमदार है। और इसका असर महिलाओं की कामुकता, उनकी सेक्सुअलिटी पर कैसे पड़ता है?
इस पर भी वुल्फ ने सेक्स वाले हिस्से में बात की है। वो बताती हैं कि कैसे ब्यूटी मिथ असली स्त्री इच्छा और उसके आनंद को दबा देता है और उसकी जगह एक दिखावटी प्रदर्शन वाली कामुकता को प्रमोट करता है।
दिखावटी मतलब?
मतलब ऐसी कामुकता जिसमें महिला को अक्सर एक पैसिव, गुड़िया जैसी, हमेशा जवान दिखने वाली चीज की तरह पेश किया जाता है। उसका अपना आनंद जरूरी नहीं रह जाता, जरूरी ये हो जाता है कि वो अपने साथी को कैसी दिख रही है। खूबसूरती को मासूमियत और एक तरह की पवित्रता से जोड़ दिया जाता है, जो कि असल मानवीय कामुकता से बहुत अलग है।
और फिर आता है भूख वाला अध्याय। इसका तो सीधा ताल्लुक डाइटिंग और ईटिंग डिसऑर्डर से होगा, है ना?
बिल्कुल, वुल्फ यहाँ डाइटिंग कल्चर और खाने पीने से जुड़े विकारों जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया पर बहुत जोर देती हैं। वो डाइटिंग को सिर्फ वजन कम करने का तरीका नहीं मानती।
तो फिर क्या मानती है?
वो इसे एक राजनीतिक शामक कहती हैं, मतलब पॉलिटिकल ट्रैंक्विलाइजर।
पॉलिटिकल ट्रैंक्विलाइजर, ये क्या मतलब हुआ?
उनका तर्क ये है कि महिलाओं को लगातार भूखा रखकर या कैलोरी गिनने में उलझा कर ये इंडस्ट्रियों ने शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है। उनका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा खाने या ना खाने पर लगी रहती है,
तो वो जिंदगी के दूसरे बड़े लक्ष्यों पर कम ध्यान दे पाती है।
हाँ बिल्कुल, वुल्फ के लिए ये जो पतलेपन का जुनून है, ये असल में समाज द्वारा स्वीकृत महिला आत्म घृणा और एक तरह की आज्ञाकारिता का ही रूप है। जब आप भूखे और कमजोर होते हैं तो आप व्यवस्था को चुनौती देने के बारे में कम सोचते हैं।
ये तो बहुत ही गंभीर विश्लेषण है। और फिर आखिरी अध्याय है हिंसा, वायलेंस पर। क्या यहाँ शारीरिक हिंसा की बात हो रही है?
एक तरह से हाँ, लेकिन ये शारीरिक से ज्यादा सांस्कृतिक हिंसा की बात है।
वुल्फ यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी को सिर्फ एक पर्सनल चॉइस की तरह नहीं देखती।
तो कैसे देखती हैं?
वो कहती हैं कि ब्यूटी मिथ ने हमारे शरीर की जो सामान्य चीजें हैं, जैसे उम्र के साथ आने वाली झुर्रियाँ या स्तनों का आकार या जांघों की गोलाई, इन सबको कमियों या बीमारियों की तरह पेश करना शुरू कर दिया।
अच्छा, जैसे ये कोई प्रॉब्लम हो जिन्हें ठीक करने की जरूरत है।
एग्जैक्टली। और फिर कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री आती है और इन बीमारियों का इलाज बेचती है। दर्दनाक खतरनाक ऑपरेशनों को जरूरी और यहां तक कि एम्पावरिंग बताकर। वुल्फ इसे शरीर पर की जाने वाली एक तरह की सांस्कृतिक हिंसा मानती हैं।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद क्या वुल्फ कोई रास्ता भी सुझाती हैं, कोई समाधान देती हैं, या सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देती हैं?
नहीं नहीं, वो समाधान की दिशा भी दिखाती है। किताब के अंत में निष्कर्ष में वो ब्यूटी सिविल डिसोबीडियंस का आह्वान करती हैं।
ब्यूटी सिविल डिसोबीडियंस, सुंदरता संबंधी नागरिक अवज्ञा, ये क्या है?
इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर सचेत रूप से इस मिथक के जो नियम कायदे हैं उन्हें मानने से इनकार करना होगा।
जैसे?
जैसे महिलाओं की जो विविधता है, अलग अलग रंग, उम्र, आकार, क्षमताएं, उसका जश्न मनाना, सुंदरता को दूसरों के मानकों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर फिर से परिभाषित करना, डर के मारे एक जैसे दिखने की कोशिश करने के बजाय अपनी असली पहचान को जाहिर करना।
मतलब मिथक के खेल को समझकर उसे खारिज करना।
हाँ, वुल्फ का मानना है कि जैसे ही हम इस मिथक को पहचान लेते हैं उसकी ताकत अपने आप कम होने लगती है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण संदेश या की थीम्स क्या होंगी? वो कौन सी बातें हैं जो हमें खास तौर पर याद रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि सौंदर्य एक राजनीतिक हथियार है। ये कोई हल्की फुल्की पर्सनल चीज नहीं है। वुल्फ के अनुसार ये महिलाओं की तरक्की के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। उन्हें असुरक्षित बनाकर ये मिथक उन्हें असल मुद्दों से, सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने से भटकाता है।
हाँ, ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा?
दूसरा, इस असुरक्षा का एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू है। ये ब्यूटी मिथ और पूंजीवाद का, मतलब कैपिटलिज्म का, बहुत गहरा रिश्ता है। कॉस्मेटिक्स, डाइट इंडस्ट्री, फैशन, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये खरबों डॉलर के उद्योग हमारी असुरक्षा पर ही तो टिके हैं।
वो पहले असुरक्षा पैदा करते हैं, फिर उसे दूर करने का वादा बेचते हैं।
बिल्कुल। और ये एक तरह का ब्यूटी टैक्स है जो महिलाओं की आर्थिक शक्ति को कमजोर करता है।
तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा, वो आयरन मेडन वाला रूपक। ये हमें याद दिलाता है कि आधुनिक सुंदरता के ये जो मानक हैं ये कितने कठोर हैं, कितने सजा देने वाले हैं। ये हमें लगातार अपनी ही निगरानी करने पर, खुद को दोषी महसूस करने पर और नाकाम होने के डर में जकड़े रखता है। हम खुद ही अपने जेलर बन जाते हैं एक तरह से।
ये बात तो है। और चौथा?
चौथा, हमारे शरीर का रोग निदान करना, मतलब पैथोलॉजाइजेशन। कैसे उम्र बढ़ने जैसी बिल्कुल सामान्य नेचुरल प्रक्रियाओं को भी बीमारियों की तरह देखा जाने लगा है जिनका इलाज जरूरी है। ये मिथक खुद को साइंस का, विज्ञान का झूठा चोला पहना देता है।
और पांचवा पॉइंट?
और पांचवा, सुंदरता का समरूपीकरण और बहिष्कार। ये मिथक सिर्फ एक बहुत ही संकरे दायरे को, जैसे युवा, गोरी, पतली, सक्षम शरीर वाली महिला को ही सुंदर मानता है, ये बाकी सभी तरह की महिलाओं की सुंदरता को, उनकी विविधता को नकारता है, उसे मिटाता है, खासकर अलग अलग नस्लों, उम्र और शारीरिक क्षमताओं वाली महिलाओं को।
तो ये सिर्फ सेक्सिस्ट नहीं बल्कि रेसिस्ट और एजिस्ट भी हैं।
बिल्कुल, ये सारे आयाम इसमें जुड़े हुए हैं।
वुल्फ की कुछ बातें तो ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे वो कहती हैं, मुझे याद आ रहा है कि महिलाओं के पतलेपन पर केंद्रित संस्कृति महिला सुंदरता का जुनून नहीं बल्कि महिला आज्ञाकारिता का जुनून है।
डाइटिंग महिलाओं के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शामक है। चुपचाप पागल आबादी नियंत्रणीय होती है। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है।
इसका मतलब तो साफ है, ये पतलेपन का दबाव सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है।
हाँ, महिलाओं को कमजोर और अपने आप में उलझाए रखो ताकि वो बड़े सामाजिक बदलाव के लिए आवाज न उठा सकें।
एक और पंक्ति है जो मुझे याद आ रही है, ब्यूटी मिथ हमेशा व्यवहार निर्धारित कर रहा है न कि उपस्थिति।
ये महिलाओं से सुंदर होने के लिए नहीं कह रहा है, ये महिलाओं से विश्वासों और व्यवहारों के एक सेट की सदस्यता लेने के लिए कह रहा है जो उन्हें उनकी जगह पर रखेगा।
ये भी बहुत गहरी बात है। मतलब असल मकसद खूबसूरत दिखना नहीं है बल्कि एक खास तरह से बर्ताव करना है।
हाँ, खास चीजें खरीदना, खुद की आलोचना करते रहना, दूसरी औरतों से कंपटीशन करना, दिखावे को असलियत से ज्यादा महत्व देना, ये सारे व्यवहार हमें उसी पुरानी सामाजिक भूमिका में, मतलब एक तरह से कैद रखते हैं।
और वो आयरन मेडन वाली बात फिर से? आधुनिक आयरन मेडन मनोवैज्ञानिक यातना का एक उपकरण है। महिला सुंदरता का एक आदर्श जो उम्रहीन भारहीन है और केवल विज्ञापनों में मौजूद है,
जो उस आदर्श की अमानवीयता को दिखाता है। हम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो असल में है ही नहीं, और ये हमें अंदर से कितना परेशान करता है।
और एक आखिरी विचार, वो पसंद या चॉइस के भ्रम पर जो था महिलाओं के सामने, जिसे पसंद की दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो वास्तव में घटते विकल्पों की दुनिया है, जहां एक महिला का सबसे महत्वपूर्ण गुण सुंदरता है।
ये उस धारणा को सीधी चुनौती देता है कि हम सब अपनी मर्जी से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। जब समाज बार बार ये मैसेज दे कि औरत का सबसे बड़ा गुण उसकी सुंदरता है, तो फिर पसंद कहाँ बचती है? वो तो एक मजबूरी जैसी बन जाती है ना?
हाँ बिल्कुल, ये सब जानना काफी आंखें खोलने वाला है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि हम इन विचारों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करें क्या? सिर्फ जान लेना काफी है या कुछ प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है?
नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम मीडिया को थोड़ी आलोचनात्मक नजर से देखना शुरू करें।
मतलब
हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, विज्ञापन देख रहे हैं, उन्हें बस आंख बंद करके सच ना मान ले। खुद से पूछें, ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इससे किसको फायदा हो रहा है, क्या ये असलियत है या फोटोशॉप, फिल्टर, लाइटिंग का कमाल है। खासकर आजकल इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के जमाने में ये सवाल पूछना और भी जरूरी हो गया है।
सही बात है।
और दूसरा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की अपनी परिभाषा को थोड़ा बदलें। क्या सेहत का मतलब सिर्फ वजन कम होना या किसी खास शेप में होना है, या इसका मतलब है अच्छा महसूस करना, एनर्जेटिक रहना, मानसिक रूप से ठीक महसूस करना?
हाँ, एक्सरसाइज को कैलोरी बर्न करने की मशीन समझने के बजाय
बिल्कुल उसे मजबूती, ताकत और खुशी के लिए करें। खाना शरीर को सजा देने या सिकोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे पोषण देने के लिए खाएं। ये सोच में बदलाव लाना जरूरी है।
तीसरा, अपने वर्क प्लेस पर, यानी जहां हम काम करते हैं, वहां थोड़ा सजग रहें। क्या वहां वाकई लुक्स के आधार पर कोई भेदभाव होता है? क्या वो प्रोफेशनल ब्यूटी क्वालिफिकेशन वाली बात सच है?
हाँ, और हमें खुद अपने काम, अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए, और अगर हम कहीं ऐसा भेदभाव देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। दूसरों का साथ उनकी शक्ल देखकर नहीं, बल्कि उनके काम और हुनर के आधार पर दें।
चौथा, एक जागरूक उपभोक्ता बने।
मतलब कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म।
हाँ,
जब हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद रहे हों, कोई नया कपड़ा ले रहे हों, या कोई डाइट प्लान शुरू कर रहे हों, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैं ये वाकई अपनी खुशी के लिए कर रही हूं या किसी डर, किसी असुरक्षा की वजह से? जब हम सोच समझकर खर्च करेंगे, अपनी जरूरत और अपनी खुशी के हिसाब से, तो उन कंपनियों की ताकत भी थोड़ी कम होगी जो हमारी असुरक्षाओं को बेचकर पैसा बनाती हैं।
और शायद सबसे जरूरी चीज,
हाँ शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल भी, व्यक्तिगत स्तर पर इस मिथक से थोड़ी आजादी पाना और सुंदरता को अपने लिए फिर से परिभाषित करना।
ये कैसे होगा?
ये छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। कभी बिना मेकअप के बाहर निकल जाना, अपने सफेद होते बालों को रंगने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करना, कपड़े आराम के लिए पहनना, न कि सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ये एक अंदरूनी बदलाव है।
ये मानना कि हमारा शरीर कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे लगातार ठीक करते रहना है।
हाँ, बल्कि ये हमारा घर है, और सच्ची सुंदरता हमारी शक्ल सूरत में नहीं, बल्कि हमारी प्रामाणिकता में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी जिंदा दिली में है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही, वो यही समझना था कि ये जो सुंदरता का भारी बोझ हम, खासकर महिलाएं, महसूस करती हैं, ये हमारी कोई व्यक्तिगत कमी या विफलता नहीं है। ये एक राजनीतिक और आर्थिक सच्चाई है, और सिर्फ ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी राहत देता है।
हाँ बिल्कुल, और मेरे लिए ये जानना बहुत अहम था कि ये पूरा मिथक आर्थिक रूप से कितना ज्यादा ताकतवर है, कैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज हमारी असुरक्षाओं पर पैसा बना रही हैं, और वुल्फ का वो आयरन मेडन वाला रूपक, वो आज भी कितना सटीक लगता है, शायद पहले से भी ज्यादा।
तो अंत में कह सकते हैं कि ये किताब हमें जगाने का, हमारी चेतना को झकझोरने का एक जबरदस्त आह्वान है। इस सौंदर्य के मिथक को पहचानना ही इससे आजाद होने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि महिलाओं का या किसी भी इंसान का मूल्य सिर्फ उनकी शक्ल सूरत में नहीं है, बल्कि उनकी पूरी इंसानियत में है, उनकी बुद्धि में, उनकी क्षमताओं में, उनके योगदान में है। हमें दिखावे से परे जाकर इसे देखना होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।